ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र की केंद्रीय कमेटी की चौथी बैठक आज से काठमांडू में शुरू हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री प्रचंड ने किया राजनीतिक एवं सांगठनिक प्रतिवेदन पेश। 16वीं योजना की अवधारणा राष्ट्रीय योजना आयोग की पूर्ण बैठक द्वारा स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने कहा 16वीं योजना से होना चाहिए अर्थतंत्र का गुणात्मक रूपांतरण। एक महीने के अंदर अपनी फार्मेसी संचालित न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करने की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी चेतावनी। और चीन की राजधानी आसपास के क्षेत्र में हुई भीषण बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बीते शनिवार से हुई बारिश के कारण 13 करोड़ से अधिक लोग हुए दुष्प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केंद्र की केंद्रीय कमेटी की चौथी पूर्ण बैठक आज से काठमांडू में शुरू हुई। आज की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और सुशासन के सवाल में माओवादी केंद्र के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार द्वारा किए गए कामों ने जनता में आशा जगाई है। आज की बैठक में अध्यक्ष प्रचंड ने पार्टी के राजनीतिक एवं सांगठनिक प्रतिवेदन पेश किया था। प्रतिवेदन में आगामी मार्गशीर्ष में विधान सम्मेलन करने और पार्टी सुदृढ़ीकरण के लिए भाद्र से कार्तिक तक 3 महीने तक जनता के साथ पार्टी नामक अभियान संचालित करने लगात योजनाएं शामिल हैं। 5 दिनों तक चलने वाली माओवादी केंद्रीय कमेटी की बैठक के आज पहले दिन विभिन्न 18 सदस्यों ने अपनी अपनी धारणा रखी। अगली बैठक कल 11 बजे बुलाई गई है। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि राष्ट्रीय योजना आयोग की 16वीं योजना से समग्र अर्थतंत्र में गुणात्मक रूपांतरण होना चाहिए। 16वीं योजना की अवधारणा तय करने के लिए आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आयोजित राष्ट्रीय योजना आयोग की बैठक को दिशा निर्देश करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि देश की अब तक की योजनाओं ने आर्थिक विकास और सामाजिक रूपांतरण में कैसी भूमिका निभाई, इसकी गहरी समीक्षा करने की जरूरत है। साथ ही इस बात का जिक्र करते हुए कि नीति तथा कार्यक्रम और बजट बनाने की प्रक्रिया परंपरागत और सीमित लोगों के विवेक पर आधारित होती है, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें व्यापक रूपांतरण जरूरी है। बता दें कि आयोग की पूर्ण बैठक ने 16वीं योजना की अवधारणा को स्वीकृत कर लिया है। नेकपा एमआलए के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि उनकी पार्टी सदन सुचारू करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने ही सभामुख को सूचना प्रकाशित कर सदन की बैठक को स्थगित करने का दबाव दिया है। वामपंथी नेता तुलसीलाल अमात्य के 36वें स्मृति दिवस के अवसर पर आज एमआलए केंद्रीय कार्यालय चैसल में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि एमआलए चाहती है कि सोना तस्करी मामले की गंभीर छानबीन हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने निर्देश देते हुए कहा है कि जिन अस्पतालों में अपने ही स्वामित्व वाली फार्मेसी नहीं है, वे 1 महीने के अंदर अपनी फार्मेसी संचालित करें। मंत्रालय ने सरकारी, निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक प्रतिष्ठानों और मेडिकल कॉलेजों के नाम परिपत्र जारी करते हुए ये निर्देश किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि 1 महीने के अंदर अपनी फार्मेसी संचालित न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंत्रालय का यह निर्देश भी है कि जिन अस्पतालों की अपनी फार्मेसी है, वे अस्पताल में प्रयोग की जाने वाली दवाएं और उपचारजन्य सामग्री 24 घंटे उपलब्ध करवाएं। संसदीय सुनवाई समिति ने विभिन्न देशों के लिए प्रस्तावित 6 राजदूतों में से 3 राजदूतों की सुनवाई की। आज समिति ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल के स्थायी नियोग के लिए सिफारिश किए गए लोक बहादुर थापा, स्विट्जरलैंड के लिए आवासीय राजदूत के लिए सिफारिश किए गए राम प्रसाद सुवेदी और फ्रांस के लिए राजदूत के रूप में सिफारिश किए गए सुधीर भट्टराय की सुनवाई की। इससे पहले बैठक की शुरूआत में ही समिति ने राजदूत सिफारिश के विषय पर उठे समावेशिता के विषय में परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान मंत्री साउद ने स्पष्ट किया कि राजदूत पद पर नियुक्ति के दौरान निर्देशिका के प्रावधानों का पालन किया गया है और इसी अंतर्गत राजदूत पद के लिए परराष्ट्र सेवा के कर्मचारियों की नियुक्ति कर समग्र राजदूत नियुक्ति को समावेशी बनाया गया है। बता दें कि विभिन्न 6 देशों के लिए राजदूत पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए बाकी 3 लोगों की सुनवाई कल होगी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने ने निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि अब से हर चार चार महीने में सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी और इसी के तहत पहली सुनवाई आगामी भाद्र 10 गति की जाएगी। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से ऊपर के ज्येष्ठ नागरिकों को लक्षित कर मोबाइल क्लिनिक संचालित की जाएगी और इस अंतर्गत मेडिकल अधिकृत सहित स्वास्थ्यकर्मियों का समूह घर जाकर अपनी सेवा प्रदान करेगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कोशी प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री उद्धव थापा ने आज पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। प्रदेश प्रमुख के कार्यालय विराटनगर में आज आयोजित समारोह में प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग ने मुख्यमंत्री थापा को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में प्रदेश प्रमुख खापुंग ने नवनियुक्त आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री बाबूराम गौतम, पेयजल सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री प्रदीप कुमार सोनवार और भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री कमल प्रसाद जवेगू को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। सुनसरी के दौरान उप महानगर पालिका में डेंगू वायरस नियंत्रण के लिए पालिका के भीतर सभी शैक्षिक संस्थाओं के पठन पाठन को बंद किया गया है। मंगलवार हुई कार्यपालिका की बैठक ने ऐसा निर्णय किया। धरान उप महानगर पालिका के प्रमुख हरकराज सांपांग ने कहा कि स्कूल बंद कर डेंगू नियंत्रण अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। झापा में आंखों में संक्रमण फैलने से स्थानीय अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मिचीनगर, बिरतामोड़, भद्रपुर और दमक क्षेत्र में स्थित आंख के अस्पतालों में आंखों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। एक ही घर में कई लोग आंखों के संक्रमण से पीड़ित हैं। मिची आई हॉस्पिटल बिरतामोड़ के नेत्र रोग सहायक पुष्प अधिकारी ने बताया कि रोजाना करीब 500 मरीज आंखों की समस्या लेकर आते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन की राजधानी बीजिंग और आसपास के क्षेत्र इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। ये बाढ़ 140 साल में सबसे भारी बारिश के कारण आई है। स्थानीय मौसम विज्ञानियों ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि बीजिंग के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि टाइफून खानून अब जापान में दस्तक दे चुका है। बीजिंग मौसम विज्ञान सेवा के अनुसार शनिवार और बुधवार की सुबह के बीच चीनी राजधानी में 744.8 मिलीमीटर यानी 29 इंच बारिश हुई। बता दें कि सन 1883 में रिकॉर्ड की शुरुआत के बाद से यह लगातार होने वाली सबसे भारी बारिश है। तूफान खानून में 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके कारण इतनी भीषण बारिश हुई। आज पहली सुबह यह जापान के दक्षिण पश्चिम ओकिनावा द्वीप के करीब से गुजरा। आज सुबह सीएनएन वेदर के अनुसार पिछले 24 घंटों में ओकिनावा के कई स्थानों पर 175 से 220 मिलीमीटर यानी 6 से 8 इंच बारिश हुई है। ओकिनावा इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के अनुसार सरकार ने 6 लाख से अधिक निवासियों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया है। आज सुबह तेज हवाओं के कारण बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे 2 लाख से अधिक घर अंधेरे में डूब गई। चीन की राजधानी बीजिंग के आसपास के क्षेत्रों में कई दिन से हो रही भारी बारिश के चलते आई बाढ़ में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य लापता हैं। सरकारी मीडिया ने मंगलवार को यह खबर दी थी। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि भारी बारिश के कारण रेलवे स्टेशनों को बंद करना पड़ा है और प्रभावित लोगों को स्कूलों में आश्रय दिया गया है। इसने कहा कि बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भर गया है और सड़कें टूट गई हैं। बाढ़ से 13 करोड़ से अधिक लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेकपा माओवादी केंद्र की केंद्रीय कमेटी की चौथी बैठक आज से काठमांडू में हुई शुरू। बैठकमै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ने किया राजनैतिक एवं सांगठनिक प्रतिवेदन पेश। 16वीं योजना की अवधारणा राष्ट्रीय योजना आयोग की पूर्ण बैठक द्वारा स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने कहा 16वीं योजना से होना चाहिए अर्थतंत्र का गुणात्मक रूपांतरण। एक महीने के अंदर अपनी फार्मेसी संचालित न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करने की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी चेतावनी। और चीन की राजधानी आसपास के क्षेत्र में हुई भीषण बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बीते शनिवार से शुरू हुई बारिश के कारण 13 करोड़ से अधिक लोग हुए दुष्प्रभावित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।